प्रिय श्रोताओ नमस्कार, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमें विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हैं और आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरम्भ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरा तिमोथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस तिमोथियुस से कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और इस संसार में हमें एक अच्छा योद्धा बनना है, एक अच्छा सैनिक बनना है, एक अच्छा विश्वासी बनना है और अपने दौड़ को, जो मसीही जीवन की दौड़ है, उसको मसीह में होकर के पूरा करना है। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस ने एक विश्वासी के जीवन बड़े ही अलंकारिक रूप से सजाया है। जो विश्वासी के जीवन की निष्ठा अत्यधिक व्यवहारिक रूप से प्रकट करता है। एक विश्वासी पुत्र है, परमेश्वर की संतान है, वह एक अच्छा योद्धा है जो आत्मिक युद्ध करता है और परमेश्वर के हथियारों से लैस रहता है। वह एक खिलाड़ी है जो नियमानुसार दौड़ता है और परमेश्वर के द्वारा मुकुट पाता है। वह किसान है, वह एक शिक्षक है और वह एक पात्र है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे अब किसान। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। विश्वासी एक किसान के समान है जो खेत जोतकर परमेश्वर का वचन बोता है। आज हमें बहुत सुनने को मिलता है, प्रभु यीशु के चरणों में अपने पूले डालो। जी हाँ, निश्चय ही मैं आशा करता हूँ कि हम कुछ पूले उसके चरणों में डालें, परंतु खेत में परिश्रम करने और बीज बोने की आवश्यकता है। किसान यदि ऐसा करेगा तो उसे फसल अवश्य ही प्राप्त होगी। यही कारण है कि मैं उन बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ सहयोग नहीं करता जो प्रचार करके संपूर्ण विश्व को मसीही विश्वास में ले आना चाहती हैं। मेरे विचार में परमेश्वर का समग्र वचन बोया जाना है कि फसल प्राप्त हो। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से था और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। यीशु मसीह को स्मरण रख, यह कैसी मनभावन बात है, अर्थात कि वह यहाँ दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। यह भी स्मरण रख कि वह मृतकों में से फिर जी उठा। वह कहता है यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। यह पौलुस के सुसमाचार हैं, इसलिए हैं कि वही इसका प्रचार करता है। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय के 9 और 10 पद में लिखा है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं, जिसके लिए मैं दुख उठाता हूं। परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होने में आपको कुछ तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। पौलुस ने बहुत कष्ट उठाए थे। कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि मैं कैदी भी हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्रदान करने के कारण ही वह कैद में डाला गया था, न कि उसने कोई हत्या किया और न कोई अपराध किया। सिर्फ परमेश्वर के वचन के कारण वह कैद था। आगे वह लिखता है, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। पौलुस को तो बंदी बना लिया गया था, परंतु वचन स्वतंत्रता से रोमी साम्राज्य में फैल रहा था। वह पागल राजा सोच रहा था कि पौलुस को कैद करके वह सुसमाचार को रोक पाएगा, जैसा कि आज बहुत सारे लोग सोचते हैं, परंतु नहीं। वचन बंदी नहीं बनाया जा सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचन आज भी संसार में प्रसारित हो रहा है। लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लालायित हैं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यह बात सच है, या यह बात विश्वास करने के योग्य है कि यदि हम उसके साथ, किसके साथ, मसीह के साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम उसके साथ मर गए, हम उसके साथ कब मरते हैं? 2000 वर्ष पूर्व हम उसके साथ मर गए हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पर उसकी मृत्यु हमारी मृत्यु हो जाती है। हम उसके साथ एक हो जाते हैं और उसके पुनरुत्थान द्वारा नया जीवन हम पाते हैं। इसका अर्थ है कि वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा हम में प्रतिदिन अपना जीवन जीना चाहता है। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 2 अध्याय के 12 पद में लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। ध्यान दीजिए, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। मेरा अपना विचार है कि सब विश्वासी उसके साथ राज्य नहीं करेंगे। यह पद इस विचार को संकीर्ण बनाते हुए स्पष्ट करता है कि केवल वे जो उसके साथ कष्ट उठाते हैं उसके साथ राज करेंगे। मेरे मित्रों, यह तो बड़ी लज्जा की बात होगी कि मुझे स्वर्ग में पौलुस के बराबर रखा जाए, क्योंकि मैंने उसके जैसे कष्ट नहीं उठाए हैं। मैं उसके बराबर रखा गया तो मुझे उससे लगातार क्षमा याचना करनी होगी। अतः मेरे विचार में यह पद उस वर्ग विशेष के बारे में है जिन्होंने मसीह यीशु के लिए सच में दुख उठाया था। पौलुस के युग में रोमी जगत में अनेक विश्वासी शहीद हुए थे, फॉक्स के अनुसार 30 लाख, क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु के त्याग से इनकार कर दिया था और उन्हें मृत्यु दी गई थी। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यह एक कठोर भाषा तो है, लेकिन इससे प्रकट होता है कि पौलुस विश्वास करता है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, मृतक है, जैसा याकूब भी कहता है अपनी पत्री में 2 अध्याय के 17 पद में। पौलुस और याकूब परस्पर विरोधी नहीं थे। याकूब विश्वास के कर्मों की चर्चा करता है और पौलुस कहता है कि सच्चा विश्वास कर्म उत्पन्न करता है। कॉल्विन ने इसी बात को इस प्रकार से कहा था, केवल विश्वास के द्वारा उद्धार है, परंतु विश्वास केवल अकेला ही नहीं है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। लिखा है वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। जी हाँ, वह झूठे को सच्चा स्वीकार नहीं करेगा। यही कारण था कि उसने अपने समय के धर्म गुरुओं का ऐसा तिरस्कार किया था और उन्हें ढोंगी कहा था, क्योंकि वे भीतर से जो थे वे नहीं हैं, वह बाहर जो दिखाते हैं वे कुछ और थे। यदि प्रभु यीशु किसी ढोंगी को स्वीकार कर ले तो वह स्वयं का इनकार करता है, क्योंकि वह सत्य है। अतः मेरे मित्रों, हमें सच्चे विश्वासी होना है, न कि ढोंगी। दूसरा तिमोथियुस के पत्री 2:14 में लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। शब्दों का तर्क वितर्क न किया करें। परमेश्वर के जन गंभीर बातों पर ध्यान केंद्रित करें। जी हाँ, हमें व्यर्थ की बातों पर, दार्शनिक विचारों पर और मतभेदों पर समय नहीं गंवाना है। मुझे एक परमेश्वर के दास ने लिखा कि वह हमारे सेवा को सराहता है और अपने कलीसिया को हमारी टीका एवं रूपरेखा पढ़ने का सुझाव देता है, जबकि हम हर बात में एक मत नहीं है। कुछ बातों में मैं उनसे सहमत नहीं होता हूँ तो कुछ बातों में वह मुझसे सहमत नहीं होते हैं। शायद स्वर्ग में जाने के बाद हम इस सत्य को समझ पाएंगे कि प्रत्येक प्रश्न के 3 पक्ष हैं, आपके विचार, मेरे विचार और सत्य। इसलिए प्रभु यीशु को हमें, अर्थात हम विश्वासियों को ठीक करना होगा। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम मुख्य बात पर सहमत हैं तो विवाद ना करें। यही तो हम दोनों चाहते हैं। मेरे विचार में हम अन्य विश्वासियों को सुधारने में बहुत समय गंवाते हैं, जबकि आवश्यक यह है कि हम सकारात्मक बातों पर रहने का प्रयास करें और सुसमाचार में परस्पर सहभागी होने का हर्ष प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। आइए अब हम आगे देखते हैं जिसे पौलुस शिक्षक कहता है। 2 तिमोथियुस के पत्री 2:15 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर का ग्रहण योग्य जो वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। अध्ययन करो और यथा संभव परमेश्वर का ग्रहण योग्य होने का प्रयास करो। वचन के शिक्षक को परमेश्वर के वचन का चेष्टा करने वाला विद्यार्थी होना है। जी हाँ, वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए हर एक विश्वासी को एक शिल्पकार के समान होना है। उसे समझना है कि वचन सत्य का एक गट्ठर है जिसमें यथोचित विभाजन किया गया है। बाइबल की रचना निश्चित नियमों और रचना के आधार पर की गई है, जिसे वचन के अध्ययन के समय ध्यान में रखना आवश्यक है कि उसका पालन किया जाए। मेरे मित्रों, आप यदा कदा एक पद निकालकर गद्यांश को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यह बहुत आसान है, परंतु बाइबल ऐसी पुस्तक नहीं है। यही कारण है कि मैं संपूर्ण बाइबल की शिक्षा पर बल देता हूँ। बहुत सारे लोग बाइबल को यहाँ वहाँ से पढ़ते हैं और उसके संदर्भ को ठीक से नहीं देखते और उसका गलत अर्थ निकालते हैं। मैं एक अंश प्रस्तुत करता हूँ जो एक ऐसे मनुष्य को प्रकट करता है जिसने बाइबल की अखंडता को, उसके विभाजन को उचित विभाजन नहीं समझता है। यह अंश मैं एक लेख में से प्रस्तुत करता हूँ। संक्षेप में, जो 3000 वर्षों से अधिक समय में अनेकों हाथों द्वारा लिखी गई बाइबल को कहना कि वह 60 से अधिक पुस्तकों का अव्यवस्थित संग्रह है, जो प्रायः अरुचिकर, अपरिष्कृत, अस्पष्ट, अस्थिरता और विषमता के साथ रखा गया है। यह पुस्तक के नाम पर कूड़ा है। कविताओं और मत प्रचार का कुंड, विधि विधान, दंत कथा और अंधकार, इतिहास और पागलपन है। यह व्यक्ति शब्दों को अच्छा काम में लेता है, परंतु बाइबल के प्रति भयानक अज्ञान को प्रकट करता है और परमेश्वर के वचन को उचित रूप से विभाजित न करने का परिणाम प्रदर्शित करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन के उचित विभाजन का अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन में कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग विधियां हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य के साथ व्यवहार किया है, परंतु उद्धार का आधार एक ही है। मनुष्य प्रभु यीशु के प्रायश्चित्य मृत्यु के द्वारा ही उद्धार पाता है, परंतु परमेश्वर में अपने विश्वास को विविध रूपों से प्रकट करता है। उदाहरण के लिए हाबिल और अब्राहम दोनों ही परमेश्वर की भेंट चढ़ाने के लिए मेमना लाए थे, परंतु आप रविवार को आराधना में मेमना लेकर के नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि यह आज की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के मेमने ने तो जगत के पाप उठा लिए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में हम पढ़ते हैं कि यह प्रभु यीशु है जो मेमना है। हाबिल और अब्राहम परमेश्वर के मेमना की प्रतीक्षा में थे और हम उसकी पूर्वकालिक मृत्यु की ओर देखते हैं। यह परमेश्वर के वचन को उचित रूप से विभाजित करने का एक उदाहरण है। काश उस संदर्भित लेख को लिखने वाला बाइबल के बारे में कुछ तो जानता। उसने लिखा कि बाइबल को कोई नहीं पढ़ता है क्योंकि वह उसी वर्ग में था। यदि कोई किसी विषय पर पांडित्य प्रकट करना चाहे तो उसे उस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः मैं कहता हूं कि वह बाइबल के बारे में कुछ लिखे तो उसे बाइबल का अध्ययन करना अवश्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान को परमेश्वर के वचन के अध्ययन की आवश्यकता है। मैं अपनी सेवा की तैयारी में एक बाइबल स्कूल को गया और मैं सच कहता हूं कि वहां मुझे बाइबल एक भूल भुलैया सी प्रतीत होती थी, क्योंकि मैं इसे नहीं समझता था। उस समय मैं निश्चय ही इस लेखक से सहमत होता। उसी समय मेरे हाथ में अंग्रेजी की बाइबल भी आई और एक महान परमेश्वर के दास के पास से मैंने इस बाइबल को लिया और उसे पढ़ना आरंभ किया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन महानुभवों की व्याख्या ने मेरी आत्मा को धन्य बनाया और मेरे लिए बाइबल एक नई पुस्तक उभर कर आई, क्योंकि उसमें व्यवस्था के अनुसार विभाजन दिखाई दिया जिसमें मनुष्य के साथ परमेश्वर के व्यवहार की क्रमवार विकासमान व्यवस्था समझने में आसानी हुई। उदाहरण के लिए व्यवस्था और अनुग्रह में अंतर जो धर्मशास्त्र को समझने का मूल है। अतः पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि वह परमेश्वर के वचन के अध्ययन में चेष्टारत रहे कि वह एक ऐसा शिक्षक हो जाए जो परमेश्वर के सत्य को उचित रीति से काम में लाता हो। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहा क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। व्यर्थ की बातों से बचें, उसमें कोई लाभ नहीं है, वे निरर्थक होती हैं। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय के 17 पद में लिखा है, और उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। इन दो व्यक्तियों के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, परंतु वे निश्चय ही विश्वास का त्याग कर चुके थे। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय के 18 पद में लिखा है, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। उस समय कुछ शिक्षकों का कहना था कि मृतकोत्थान हो चुका है और जो जीवित हैं वे चूक गए हैं, छूट गए हैं। तब वह आगे क्या आता है, दूसरा तीमुथियुस 2:19 में, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। यह छाप लगी है अर्थात मुहर लगी है। मुहर स्वामित्व और प्रामाणिकता की निशानी थी। प्रभु अपनों को पहचानता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6:8-9 में परमेश्वर ने अपनी प्रजा से कहा, इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। इसराइलियों के घर परमेश्वर के वचन के लिए विज्ञापन पट का काम करें जिससे कि वे परमेश्वर के आराधक प्रकट हों। आज का विश्वासी क्या करे, वह कैसे प्रकट करे कि वह परमेश्वर की संतान है? जो प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। इस प्रकार मनुष्य जान लेगा कि परमेश्वर का जन कौन है अर्थात विश्वासी कौन है। यही अलग किया जाना है, बुराई से अलग, प्रभु के लिए अलग। यदि आप प्रभु का नाम लेते हैं तो आप पाप में नहीं जिएंगे। दुर्भाग्य से कुछ लोग आधारभूत शिक्षा और विश्वास पर बल देते हैं और पता चलता है कि वे किसी स्त्री के चक्कर में हैं या कोई पाप में पड़ गए हैं या बेईमानी करते पकड़े गए हैं। परमेश्वर अपनों को पहचानता है क्योंकि वह हृदय को देखता है, परंतु संसार तो बाहरी जीवन को देखता है। मेरे मित्रों, संसार पाप का प्रचार ऐसा करता है कि वह अति आकर्षक दिखाई देता है। हम विश्वासी इसकी तुलना में क्या करें? हमारे जीवन प्रभु यीशु का आकर्षक प्रचार प्रसार हो ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आइए अब हम आगे बढ़ें और हम देखेंगे 2 तीमुथियुस की पत्री 2:20-21। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मेरे मित्रों, यहां पर अब हम देखते हैं कि पौलुस पात्र के बारे में बातें करता है। इन पदों में विश्वासी की तुलना एक पात्र से की गई है। किसी पात्र को तभी काम में लिया जा सकता है जब वह स्वच्छ होगा। कल्पना कीजिए कि आप रेगिस्तान में प्यास के कारण मर रहे हैं और तभी आप एक जल के सोते के पास आते हैं। वहां 2 कटोरे हैं, एक सोने का अति सुंदर कटोरा है परंतु वह गंदा है और दूसरा टूटा हुआ कटोरा है परंतु स्वच्छ है। आप कौन सा कटोरा काम में लेंगे? परमेश्वर आपसे कहीं अधिक बुद्धिमान है। वह गंदा पात्र काम में नहीं लेता है, उसे स्वच्छ पात्र की आवश्यकता है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 में दाखरस बनाया था। उसने टूटे फूटे पुराने पात्रों में पानी भरवाकर उन्हें अपनी महिमा के निमित्त काम में लिया था। परमेश्वर आज भी स्वच्छ पात्र खोजता है, सुंदर पात्र नहीं। वह चाहता है कि आप परमेश्वर के समक्ष पवित्र हों, शुद्ध हों, ताकि वह आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। 2 तीमुथियुस के पत्री 2:22 में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ओह, वह कितनी बार विश्वास प्रेम और शांति को एक साथ रख रहा है। वे मसीही जीवन का सार हैं। ये बातें प्रचार मंच से कहने की नहीं, बेंचों पर बैठे आराधकों के जीवन में व्यवहारिक होना है। 2 तीमुथियुस 2:23 में आगे पढ़ते हैं, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। मेरे मित्रों, लोग मुझसे प्रायः अनावश्यक बातों पर विवाद करना चाहते हैं, परंतु हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। संसार जल रहा है और देर ना हो जाए। हमें सुसमाचार सुनाना है ताकि लोग सच्चाई को जान जाएं और वे इस जलते हुए संसार में बच जाएं। अब हम देखेंगे सेवक के बारे में। दूसरा तीमोथियुस 2 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। अंत में विश्वासी एक सेवक है और उसे सबके साथ विनम्र होना है। मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां विषमता है। योद्धा को लड़ना है और सेवक को लड़ना नहीं है। क्या यह विषमता है? नहीं, यह असंगत परंतु भक्ति युक्त कथन है। आप सत्य के लिए खड़े हो तो आपकी एक पहचान हो और लोग जाने कि आप कहां खड़े हैं। कायर ना बने। किसी ने कहा है, कहा जाता है कि शांत रहना सोना है, परंतु कभी कभी वह केवल सुनहरी होता है। मेरे मित्रों, सत्य के लिए खड़े हों परंतु विरोधियों को नम्रता से समझाएं। यदि आप किसी को मसीह के निकट लाना चाहते हैं, सत्यता को बताना चाहते हैं, तो विवाद ना करें। यदि वह आपसे सहमत ना हो तो उसे असहमत होने दें, परंतु उसे परमेश्वर का वचन अवश्य सुनाएं। दूसरा तीमोथियुस 2 अध्याय के 26 पद में लिखा है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस हमें पात्र कहता है, सेवक कहता है, धावक कहता है, और यह इसलिए कहता है कि हम एक विश्वासी जो इस संसार में रहते हैं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकें। जी हाँ, आज हम सबके लिए अवसर है कि हम एक सेवक के रूप में परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में नहीं सुना है। उन्हें यह भी पता नहीं है कि वही उनका मुक्तिदाता और उद्धार करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in।
वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे, पहाड़ पर खड़ी कि मसीह ने सलीब दिखती है।